अपारे काव्य संसारे सूक्ति सिंधोः जलम मधु जायते मधुरम निम्बम कविता वनिता वने। इस अपार काव्य रूपी संसार में सुभाषित रूप समुद्र का जल मीठा है और कविता कामिनी रूप वन में नीम का पेड़ भी मीठा लगता है। संस्कृत साहित्य में सुभाषितों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा कम शब्दों में सरलता और सहजता के साथ अगाध ज्ञान प्राप्त होता है। आज हमने चुभन के पटल पर गुजरात से डॉक्टर भावप्रकाश गांधी जी को आमंत्रित किया है। आपने सुभाषितों के महत्व को बाल्यकाल से ही जानते हुए और जीवन के अनेक क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता को देखते हुए सुभाषितों की रचना करनी आरंभ की, जो आज तक अनवरत जारी है। डॉक्टर गांधी सरकारी विनयन कॉलेज गांधीनगर में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आपको गुजरात सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य एकेडमी की ओर से संस्कृत युवा गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वर्णिम गुजरात संस्कृत संभाषण योजना के अंतर्गत 1,00,000 लोगों को संस्कृत सिखाने के अभियान में संयोजक के रूप में कार्य करने हेतु उन्हें श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सारस्वत गौरव सम्मान प्रदान किया गया। अब तक आपकी 12 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। संस्कृत साहित्य एकेडमी द्वारा आपके सुभाषितों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। आपके सुभाषित समाचार पत्र में प्रतिदिन छपते हैं तथा सोशल मीडिया के द्वारा हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। आपके द्वारा किया जा रहा संस्कृत के क्षेत्र में संभवतः ये पहला प्रयास है। तो आइए दोस्तों, गांधीनगर गुजरात से डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी जी के साथ संवाद करते हैं।
नमस्ते डॉक्टर साहब।
नमस्ते जी,
कैसे हैं आप?
एकदम कुशल मंगल
जी सर।
और जब पिछली बार आप
हाँ जी
आपसे बात कर बहुत अच्छा लग रहा है।
हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप जब पिछली बार आए थे चुभन पर तो आपके कवि रूप की एक छोटी सी झलक हमें मिली थी, तो आज उसी बात को हम लोग थोड़ा आगे ले जाएंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आधुनिक समय में संस्कृत भाषा में क्या क्या कार्य हो रहे हैं।
देखिए, संस्कृत भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है, लेकिन आधुनिक भाषा भी है, यह भी हमें स्वीकारना पड़ेगा।
जी बिल्कुल।
क्योंकि साहित्य है वह जब निरंतर बनता जाता है तो उसकी उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता का हमें पता चलता है।
बिल्कुल।
हम आधुनिक संस्कृत साहित्य की बात करें तो प्राचीन साहित्य को हम ले सकते हैं कि वेद आदि जो हमारे अपौरुषेय ग्रंथ हैं, वहां से संस्कृत भाषा का प्रारंभ हुआ और जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ तक संस्कृत भाषा की अनवरत जो धारा है वो प्रवाहित होती रही
जी।
उसके बाद के लगभग 300-400 वर्ष हमें संस्कृत साहित्य के निर्माण में कहीं न्यूनता दिखाई देती है, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से हम देखें तो बहुत सारे ग्रंथों की, बहुत सारे काव्यों की, नाटकों की और अनेकानेक जो आधुनिक विधा हैं, उनमें भी संस्कृत साहित्य की रचना होती रही है।
जी।
जैसा मैंने अभी अध्ययन किया था कि 1901 से लेकर हम आज तक जो संस्कृत साहित्य के निर्माण की बात करें तो महाकाव्य है वो 350 महाकाव्य लिखे गए हैं। ये 121 वर्ष में 350 से ज्यादा महाकाव्यों की रचना हो गई
जी।
और उपन्यास, गजल, लघु कथाएं, एकांगी, एकांकी और सोनेट आदि जो आधुनिक विधा हैं, उनमें भी निरंतर संस्कृत साहित्य में रचना होती है। और आप देखते हैं कि आजकल वर्तमान पत्र है वो भी संस्कृत में आपको प्राप्त हो रहे हैं
जी। जी।
आकाशवाणी में या विविध पत्र पत्रिकाओं में भी संस्कृत साहित्य के सर्जन के संदर्भ में बहुत सारी बातें आप अनवरत देख रहे हैं
जी। बिल्कुल।
विशेष रूप से जब आधुनिक शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आ रही है, उसमें भी संस्कृत को बहुत प्रश्रय और बहुत आशावान नजर आते हैं संस्कृत साहित्य को देखते हुए भी। इस तरह हम देख सकते हैं कि आधुनिक समय में भी हम संस्कृत साहित्य को उतने ही वेग से हम देख पा रहे हैं।
पर सर, जहां तक मैं देखती हूँ कि संस्कृत को अभी भी बहुत एक कठिन विषय के रूप में देखा जाता है, मतलब अगर कहा जाए आज के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, तो एक बार लगता है कि नहीं ये बहुत कठिन विषय, लेकिन जैसा आपने बताया कि 350 महाकाव्यों की रचना हो गई और सभी नई विधाएं, एकांकी, नाटक, उपन्यास, गजलें तक लिखी गई, लेकिन ऐसा कुछ बहुत सामने आई ये बातें अभी भी मैं देखती हूँ नहीं होता। तो आप लोग इस विषय में, इस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं? सोशल मीडिया में भी आप डालते हैं अपने सुभाषित, तो इन सब चीजों में आप लोग क्या कर रहे हैं?
देखिए, किसी भी चीज को पुनः स्थापित करने के लिए
जी जी
संस्कृत भाषा को एक समय में ऐसा मानने लगे लोग कि यह अब व्यवहार की भाषा नहीं है
नहीं है बिल्कुल
और मात्र ये ग्रंथों में किसी न किसी रूप में बस प्रचलन की और कोई विशिष्ट व्यक्तियों की भाषा रही है।
और
ऐसे
हमारी आदत पड़ गई टीका पढ़ने की, और मतलब मूल ग्रंथ जो है उनसे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल
जी।
ये भी एक समस्या है, लेकिन हम देख रहे हैं विगत 30-40 वर्ष का आप इतिहास देखें या आप ये प्रवाह देखें
जी,
तो
जी
पुनः संस्कृत की ओर लोग लौट रहे हैं और
जी
आज
बिल्कुल
और मात्र संस्कृत के ही विद्यार्थी नहीं, लेकिन संस्कृतेतर बैंकिंग क्षेत्र में हो, कोई फैशन डिजाइनर के क्षेत्र में हो, कोई व्यवसाय कर रहा हो, कोई महिलाएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं अब संस्कृत सीखने के प्रति रुचि रखते हैं।
जी, जी
और अन्य भाषाओं के भी, मैं जहां जहां मिलता हूँ इंग्लिश के अध्यापक भी मिलते हैं तो वो अपनी संस्कृत के प्रति प्रीति को दिखाते हैं। मुझे अब लग रहा है कि संस्कृत मुझे सीखना चाहिए, मैं अपनी भाषा के साथ अच्छा न्याय करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो संस्कृत भाषा के माध्यम से मैं उसको और अच्छी तरह से जान पाऊंगी, ऐसा अभिप्राय व्यक्त करते हैं। समय लगेगा इसको पुनः स्थापित करने में, लेकिन निरंतर बहुत प्रगति हो रही है। लोक व्यवहार में भी
यह है कि दुख की बात तो यह है कि इतनी दशा इसकी खराब हुई कैसे, ये एक सोचने का विषय हो जाता है कि हमें इसका उत्थान करने के लिए फिर से प्रयास करने पड़ रहे हैं।
हाँ जी हाँ जी, वो मध्यकालीन जो समय रहा है
जी बिल्कुल,
पराधीनता की अवस्था में थे उस समय हमारे सबसे ज्यादा जो प्रहार हुआ वो हमारी ज्ञान परंपरा पर हुआ।
बिल्कुल सर,
हमारे आप देख रहे होंगे कि गुरुकुल उस समय 35,000 के आसपास थे पूरे भारत में, और जहां पर संस्कृत के माध्यम से ही समस्त शास्त्रों का अभ्यास कराया जाता था। फिर आप केमिस्ट्री ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, कोई भी विषय ले लीजिए, वो उनका जो माध्यम होता था वो संस्कृत होता था। लेकिन मध्यकाल में और विशेषकर जो वैदेशिक जो लॉर्ड मैकाले आदि आए, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला और आज हम देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसकी कैसा प्रचलन है। लोग बचपन से ही अपने बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल रहे हैं, नहीं इंग्लिश के बिना तो काम चलेगा नहीं, इंग्लिश का अभाव नहीं होना चाहिए पर इतना भी प्रभाव नहीं होना चाहिए कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से, हम अपनी परंपराओं से विमुख होते जाएं। और
बहुत बहुत
और संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का जो सशक्त माध्यम है वो संस्कृत भाषा है।
जी बिल्कुल, बहुत ठीक बात आपने की सर। आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं इस दिशा में?
देखिए, मैं भी एक संस्कृत का एक छोटा सा सेवक हूँ और संस्कृत विषय को जहां तक मैं समझ पाया हूँ, संस्कृत के विषय में करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। हम तो कह सकते हैं कि एक संस्कृतोपी यज्ञ में हमारी एक आहुति है और लगभग 6-7 साल पहले जब अपनी आजीविका की स्थिति में एक स्थिरता आई, उसके बाद मुझे प्रतीति हुई कि कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो संस्कृत को लोक लोक तक पहुंचा सके। और इस संदर्भ में सबसे जो सशक्त माध्यम है वो मुझे सुभाषित लगा, क्योंकि संस्कृत के सुभाषित कोई भी विषय का विद्यार्थी हो, कोई भी विषय से संबंधित, कोई भी क्षेत्र से संबंधित मनुष्य हो, वो सुभाषितों से उसका स्वाभाविक प्रेम होता है।
जी बिल्कुल
और हम सुभाषितों के माध्यम से लोगों से के साथ एक ऐसा तादाद में स्थापित कर जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे जीवन के आसपास की कुछ ऐसी घटनाएं हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है।
जी
और यह एक विचार मन में आया और हम हमारे जो साथी कवि थे डॉक्टर पंकज रावल,
जी जी
एक दिन हम बैठे थे, मैं सोमनाथ विश्वविद्यालय में तब प्राध्यापक था,
जी
तो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और बस ऐसे विचार आया कि ऐसे कुछ कार्य हमें करने चाहिए। और हम बैठे और 7 दिन में हमने 111 श्लोकों का उस समय निर्माण कर लिया।
7 दिन में 111। अच्छा
हाँ
जी
जी, बस वही 1-1.5 घंटा बैठते थे शाम के समय और विचार आते गए और उसको हम काव्यबद्ध करते गए,
जी
जैसे रामायण महाभारत या आप गीता ले लीजिए, ये सारे ग्रंथ ये अनुष्टुप छंद में है। तो हमने जो पहला ग्रंथ है अभिनव सुभाषितावली, यह
जी
हमने अनुष्टुप छंद में बांध दिया। और अत्यंत प्रसन्नता का यह भी विषय है कि आप जब हम मेरे से आप अभी आपसे वार्तालाप हो रहा है, तो अभी हमारी जो गुजरात की संस्कृत साहित्य अकादमी है वो
जी
इसको प्रकाशित करने जा रही है,
वाह, बहुत बड़ी बात है सर।
तो लोगों लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा हमें माध्यम अकादमी के द्वारा प्राप्त हुआ है। और हम कह रहे हैं, हम यही मान रहे हैं कि हमारा जो परिश्रम था वो अब सार्थक होता दिखाई दे रहा है।
जी सर, बहुत बहुत आपको बधाई हो। ये तो काफी अच्छा कार्य आपने किया और इसमें प्रकाशित हो रहा है, तो ये भी जाएगी ये बातें आपकी। और सुभाषित को आप आज के समय में कितने देखती हूँ, आप सोशल मीडिया में भी व्हाट्सएप में डालते हैं आपके एक दो दो लाइन डालते हैं, जैसा आपने कहा कि छोटी छोटी बातें जिनसे हम लोग कनेक्ट होते हैं, तो उस पे आपने डाला, शिक्षक दिवस पर डाला, तो इस तरह से आज के समय में ये
देखिए, सुभाषित एक ऐसा संस्कृत साहित्य का एक ऐसा रत्न है जिसके माध्यम से हम
जी
बहुत सारी जीवन की बातें, और
जी
यदि आप कोई भी विषय ले लीजिए, नीतिमत्ता की बात कर लीजिए, शिष्टाचार की बात कर लीजिए आप, या किसी भावनाओं की बात बात कर लीजिए, संवेदनाओं के संदर्भ में, प्रेम
जी
के संदर्भ में, उत्साह के संदर्भ में, विजयी होने के संदर्भ में, निराशा आ जाए तो उसमें आशावान होने के संदर्भ में, ऐसे ऐसे कई विषय हैं जिन पर ये सुभाषित है। वो बहुत सचोट एक प्रहार या कह सकते कार्य करते हैं। सुभाषित को ऐसा मैं मानता हूं जैसे कोई कड़वी दवा दे रहे हैं, तो उस कड़वी दवा को शहद के
जी
साथ दिया जाए तो वो दवा अपना कार्य भी करती है और जो ग्रहण करने वाला है उसको भी वो उसका लाभ प्राप्त हो
जी
जाता है। सुभाषितों के माध्यम से हम
जी
समस्त मानव जाति है उनको जीवनोपदेश दे सकते हैं, व्यावहारिक ज्ञान दे सकते हैं, उपालंभ भी दे सकते हैं व्यंग्य के माध्यम से, नीतिमत्ता की बात, आचार विचार, प्रामाणिकता आदि मूल्य विषयक बोध पाठ भी हम दे सकते हैं। और संस्कृत साहित्य में तो
जी
इतने सुभाषित ग्रंथ हैं। जब मैं थोड़ा इस मेरा प्रिय विषय रहा है सुभाषित, तो मैं जब संग्रह या देख
अच्छा
रहा था तो इतने सारे सुभाषित के ग्रंथ हैं, मुझे लग रहा है 1 लाख से ज्यादा सुभाषित संस्कृत साहित्य में विद्यमान होंगे। और वो सुभाषित हमें कोई ना कोई
जी
जीवन उपदेश दे जाते हैं और बहुत कारगर भी सिद्ध होते हैं। मेरे सुभाषितों
मतलब उपदेश होते हुए भी वो
नीतिमत्ता,
कहे जाते हैं।
हाँ जी हाँ जी, मैं अपनी प्रशंसा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रतिभाव आते हैं कि कोरोना जैसे समय में या किसी बहुत अपने घर में कह सकते हैं बहुत आत्मीय जन है, उनका दिवंगत हो जाना, ऐसी स्थिति में वो विषाद ग्रस्त हो
जी
जाते हैं। समय में ऐसे सुभाषित उनको एक उत्साह दे देते थे और जिजीविषा का कार्य करते थे। तो कोरोना समय में
जी
हमने भी यह कार्य है वो चालू रखा और इस माध्यम से भी लोगों
अच्छा
को थोड़ा सा एक कह सकते हैं आशा का संचार भी हुआ कि नहीं, जीवन है वो यहाँ तक सीमित नहीं है और जीवन जीने के और भी अच्छे अच्छे उपाय हैं, उन माध्यम से हम अपने जीवन को और सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। तो ये सुभाषितों का एक प्रभाव मुझे दिखाई दिया।
जी, तो इसी विषय पर सर, कोरोना पे जैसा आपने कहा, तो इसी पर कुछ सुभाषित हमें सुनाएं।
हाँ, कोरोना काल में भी वैसे संस्कृत के लोग हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा है ना, वो एक चेतनावंत भाषा है, चेतन भाषा है। मनुष्य जब माने कोई भी पढ़ता है ना, तो उसके साथ एकदम जीवंतता उसमें आ जाती है।
जी
तो
जी
कोरोना काल में संस्कृत के लोगों ने भी बहुत सारे जो है कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किए।
जी बिल्कुल
तो कोरोना के विषय में भी उस संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, तो दो तीन मैंने श्लोक उस संदर्भ में बनाए थे। देखिए कितना सुंदर और सरल सरल भी है।
जी
यान भिन्न पंथा न करे दिन करणे नाथ तपसी क्वचित शांता स्वांतः जलधि जलदाम भोजनिलया पिता गेहे बाला नव नव विलेखेषु मुदिता किमप्येवं मन्ये अतिथिरिव समायाति सुदिनम्। देखिए कितना सुंदर भाव है कि कोरोना काल वैसे तो हमारे लिए बहुत ही दुर्दांत समय रहा है, लेकिन इसमें हम सकारात्मकता भी देख सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से मैंने कहा, देखिए जो राजमार्ग है वो कितने अलग अलग दिखाई दे रहे हैं,
जी
और सूर्य है उसका प्रकाश भी कुछ ज्यादा ही प्रकाशित होता दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल,
जल है या समुद्र है, सरोवर है, उसमें भी एक प्रकार की शांति व्याप्त हो चुकी है। जैसे प्रकृति अपनी स्थिति में होती है, उस स्थिति में ये आप जलधि या सरोवर आदि को आप देख सकते हैं। और सबसे जो बड़ा जो कार्य हुआ है इस कोरोना के समय में, कि जो पिता थे उनको पुत्रों के लिए समय नहीं था, लेकिन कोरोना ने एक ऐसा कह सकते हैं इतना सुंदर समय स्वर्ण काल दे दिया कि पिता घर पर थे और बालकों को, क्योंकि बाहर तो ले जा नहीं सकते, इसलिए अंदर ही नए नए खेल खिलाते हुए वो प्रसन्नता से रह रहे थे। शायद हो सकता है कि प्रकृति ने इस तरह कोरोना से के माध्यम से आकर हमें एक अच्छा मौका हमें दिया है अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को और अपने परिवार को एक संगठित करने के लिए, इस तरह का एक श्लोक बनाया था। दूसरी तरह दूसरा ऐसा भी एक श्लोक मैंने बनाया था, कर्ता हम मम शासने च धरिणी तेतान भ्रमान भ्रंशयन यह कृत्वा निज बंधने पशुशुकान मुग्धोस्ति बद्धो गृहे पारुष्ये प्रकृते प्रहार परिघ प्रास्थापयत पश्यतः कोरोना करुणैव सेव परितो देहावसाने रता। कोरोना से पहले मनुष्यों को ये अभिमान हो गया था कि यह इस संसार को चलाने वाला मैं हूं और यह संपूर्ण संसार है वो मेरे अधीन है। इस प्रकार के भ्रमों को नष्ट करते हुए जिसने पशु और शुकों को यानी पशु और पक्षियों को अपने बंधनों में बांध दिया था, आज देखिए कोरोना ने ऐसी स्थिति कर दी कि वो खुद अपने पिंजरे में बंध गए और पशु पक्षी वो स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं। तो ये प्रकृति का एक प्रहार जो घन है, हथौड़ा है, वो प्रकृति ने यहाँ पर प्रस्थापित किया है, और कोरोना है वह चारों तरफ से देहावसान कर्म में वो लगा हुआ है कि आप अभी सुधर जाइए, अभी मौका है। प्रकृति और परमात्मा दोनों के प्रति आपकी आस्था और श्रद्धा और उसके लिए आप अपना चिंतन बदलिए, यह एक शिक्षा भी कोरोना प्रदान कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मैंने काव्य इस कोरोना के समय में लिखे हुए थे।
बहुत सुंदर भाव था, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पशु पक्षी जो है जिनको हम कैद में रखते थे वो तो अपना स्वतंत्र होके इस समय विचरण, आदमी जो है वो बिल्कुल कैद में इस समय हो गए। बिल्कुल ठीक आपने की। और डॉक्टर साहब, जीवन की असफलता के विषय में, मित्रता के विषय में, इन सब विषयों पर भी आपने काफी सुभाषित लिखे। जीवन की असफलता के संदर्भ में आपका
हाँ जी, देखिए जीवन को एक अलग तरीके से देखने का मैंने प्रयत्न किया है, और
जी
सुभाषित जब हम लिखने बैठते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा विचार हमारे मन में आ जाता है कि वो एक अलग ही स्तर पर हमें कुछ बोध दे जाता है।
जी
देखिए जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है वो मनुष्य को ऐसी होती है कि कोई निंदा करे
जी
तो आदमी है वो दुखी हो जाए, और
जी
प्रशंसा करे तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है।
जी
लेकिन जीवन जीने का जो वास्तविक तरीका है वो मैंने एक श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
जी
मौनम स्वस्य प्रशंसायाम, निंदाम च सहते मुदा, जितम तेन जगत सर्वम, जीवनम चापि जीवितम। जिसने अपनी प्रशंसा के समय मौन का धारण कर लिया, मौन व्रत धारण कर लिया,
जी
और निंदा को प्रसन्नता से सह लिया, तो आप ये समझ लिए कि उसने पूरा संसार जीत लिया,
जी
और उसने अपना जीवन है वह भी जी लिया है। तो इस तरह एक जीवन को जीने के लिए निंदा और प्रशंसा से आपको परे रहकर विचार करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम उससे विचलित हो जाते हैं।
बिल्कुल
लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन जीने का जो ये माध्यम है ये सुभाषित देते हैं। देखिए जिंदगी कैसे जी जाती है, जैसे एक बहुत मैंने सुंदर एक भाव व्यक्त किया श्लोक के माध्यम से,
जी सुनाइए।
पादाद्रेण विना शक्यम पयोधेर लंघनम मतम, नेत्रार्द्रेण विना पारम न शक्यम जीवनम क्वचित। जब मनुष्य के जीवन में दुख आ जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाता है,
जी
तो एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया कि जिस तरह पैर भीगे किए बिना समुद्र को पार करना असंभव
असंभव है
है,
जी
उसी तरह आंखों को भीगी किए बिना जिंदगी जीना संभव नहीं है। तो कभी ना कभी दुख आते हैं, तो
बिल्कुल
उस दुखों को भी हमें हंसकर सहन कर लेना चाहिए, और यही जीवन की सार्थकता है। फिर
बहुत
मैंने
सुंदर
देखिए कि जीवन को एक वन के माध्यम से, एक सुंदर उपवन के माध्यम से मैंने एक श्लोक में प्रस्तुत किया है, प्रणयम कुसुमम विद्धि। देखिए प्रणय यानी प्रेम
जी
स्नेह,
जी
इसको आप कुसुमम विद्धि, इसको आप फूल जान लो,
जी
सौरभम तु समर्पणम, और समर्पण को आप उसकी सुरभि जान लो।
जी
आप किसी के प्रति स्नेह श्रद्धा रखते हैं और उसके ऊपर उस समर्पण हो जाता है, और इन दोनों के माध्यम से जीवनम लसितम भवे, जीवन रूपी जो वन है, जीवन और वन, जीवन रूपी जो वन है वो लसितम भवेत, वह खिल जाता है। तो
जी
ऐसे बहुत सारे जीवन विषयक सुभाषित हैं, वो मेरे जो सुभाषित हैं वो अधिकांश एक सांत्वना प्रदान करने हेतु और कुछ नया उत्साह संचार करने हेतु विचार किया जाता है। और मेरी और पंकज सर की बात होती है, हमारे जो साथी कवि हैं,
जी
तो उन हम ऐसे ही बातचीत करते हैं, और उस बातचीत करने के समय कोई विचार हमारे मन में प्रस्थापित हो जाता है, और उस विचार को लेकर हम उसको काव्यबद्ध कर लेते हैं और सुभाषित बन जाता है।
बहुत
देखिए
अच्छा
हाँ
कार्य। अच्छा, जैसे
जी,
कि सर संस्कृत में काव्य शास्त्र के जो प्रयोजन दिया, तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि उसमें कहते हैं ना कि ऐसा उपदेश दो जो मित्र के समान हो। तो आपके सुभाषित भी मतलब इतनी कठोर बात को भी इतने सहज तरीके से कहते हैं कि वो लगता है जैसे कोई मित्र हमसे बड़ी प्रेम पूर्वक कोई बात कर रहा है, तो असर भी ज्यादा होता है। आपके सुभाषित मुझे ऐसे ही लगते हैं, मैं तो हमेशा पढ़ती हूँ आपके।
हाँ जी हाँ जी,
जी
बस प्रयत्न ऐसा रहता है कि किसी को ऐसा प्रतीत ना हो कि ये सुभाषित हैं, वो कहीं
जी
बाहर से और कोई विशेष कवियों के द्वारा, कोई बहुत प्रतिष्ठित कवियों के द्वारा हो, तो उनको ऐसा लगता है कि उनसे उनके साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता है।
जी
और मित्रता के समान जब हम किसी बात को रखते हैं तो
जी, जी
वो सहज रूप से स्वीकार किया जाता है।
जी
मित्रता के संदर्भ में तो बहुत सारे सुभाषित हैं, क्योंकि हमारी यह मित्रता है वो मित्रता को हमने सुभाषितों के माध्यम से व्यक्त किया है।
अच्छा
जो
जरूर
हमारे कवि है ना वो सोमनाथ रहते हैं
अच्छा
और मैं गांधीनगर रहता हूँ,
जी
लेकिन हमारी मित्रता ऐसी है कि वो मित्रता के संदर्भ में हर रोज बात होती है और उन बातों के पश्चात कोई ऐसा विचार आता है, उस विचार को हम 10 मिनट में 15 मिनट में एक श्लोक में उसको हम प्रस्थापित कर देते हैं।
जी जी
देखिए एक बहुत सुंदर मित्रता के संदर्भ में भी आप सुन लीजिए, क्योंकि
जी बिल्कुल सुनाए, मित्रता के तो एक नहीं, जितने ज्यादा आप सुनाए हमें अच्छा लगेगा, सुनाए सर।
एक बहुत सुंदर, शुष्केण पर्णेन समः स्वकालो यदा समायाति तदा स्वहस्ते न केवलं पर्ण सुखं सुमं वा ऋतुं वसंतं नयति स्वमित्रम्। अब मित्र कौन होता है, हमारे सुभाषितों में परिभाषाएं भी बहुत हैं कि आनंद किसको कहते हैं, संतोष किसको कहते हैं, प्रकृति किसको कहते हैं, विकृति किसको कहते हैं। तो ये मित्रता की एक परिभाषा है।
जी
जिस समय शुष्केन पर्णेन, सूखे पत्ते की तरह जब हम बुरा समय चल रहा हो तब अपने हाथ में कोई क्या कहते हैं ताजे पत्ते नए पत्ते लेकर आए ऐसा नहीं,
जी
अपने हाथ में एक सुख का पत्र या पुष्प नहीं लेकिन पूरी की पूरी वसंत ऋतु जो लेकर आ जाए उसको मित्र कहा जाता है। तो ये जो श्लोक था उसका भाव था न केवलम पर्ण सुखम सुमम्मा ऋतुम वसंतम नयति स्वमित्रम। पतझड़ आए उसके बाद वसंत आए तो ठीक है, लेकिन एक पत्ता भी पत्ता के समान भी सूखे पत्ते के समान भी यदि मित्र के जीवन में दुख आ जाए तो जो सच्चा मित्र होता है ना वो पूरी की पूरी वसंत ऋतु लेकर उसके घर पहुंच जाता है, उसके पास पहुंच जाता है, उसको मित्र
बहुत सुंदर परिभाषा आपने की सच्ची मित्रता की।
और एक और दूसरा भी बहुत सुंदर है कि मित्र कैसा होता है, तो क्या दुखा तपे सुख जले न समाहि वृष्टि रज्ञान घोरति मेरे द्युति भाव दृष्टि चंद्राच वै मलयजादपि यत्र शैत्यम लोको बुधा सुमनसा किल सख्य माहू। मित्रता को संस्कृत में सख्य भी कहा जाता है,
जी जी
सखा
जी,
और उसका भाव तो सख्य कहा जाता है। अब वो मित्र होता है, मित्रता कैसी होती है कि दुखा तपे दुख रूपी यदि धूप आ जाए वह सुख रूपी जल से जहां वृष्टि कर दे बरस जाए, दुख रूपी धूप में सुख के जल के समान जो बरसता है
जी।
अज्ञान घोर तिमिरे घोर अज्ञान रूपी अंधकार में जो प्रकाश के समान दिखाई देता है और जो चंद्र और चंदन दोनों से भी ज्यादा शीतल होता है उसे विद्वान लोग है वो मित्रता नाम से पहचानते हैं।
बहुत सुंदर।
और ऐसे हमारी जो ये शैली रही है वो किसी न किसी उपमा को साथ में लेते हुए या किसी ऐसे ही कोई पदार्थ को साम्य भाव से देखने की हमारी कोशिश रहती है। देखिए एक ऐसा ही था कि सोने सुवर्ण पात्रे यदि मृणमये वा दीपोस्ति सार्थस समसाम निहंता तथा सुहित स्यात् सधनोत दीनः सार्थ सहायो विपरीत काले। दीपक है वो सोने के पात्र में हो या मिट्टी के पात्र में हो
जी।
यदि अंधकार का वो नाश करता है तो वो सार्थक है, यदि सोने के पात्र में हो लेकिन वो दीपक प्रज्वलित ही ना हो तो दीपक सोने के पात्र वाला भी निरर्थक है। उसी प्रकार यदि मित्र धनवान हो या निर्धन हो लेकिन यदि विपत्ति के समय में जो सहायता करता है तो ही वह मित्र सार्थक कहलाता है। माने उसको धन और निर्धनता के आधार पर हम मित्रता को नहीं तोल सकते। मित्रता तो बस विपत्ति आ जाए और उसके सहयोग के लिए जो पहुंच जाए वो सच्चा मित्र होता है।
बिल्कुल, बहुत सुंदर भाव है सर मित्रता के ऊपर, तो आपने बहुत ही सटीक एकदम परिभाषा दे दी और माता के विषय में भी आपने कुछ सुभाषित लिखे हैं, वो अगर सुनाना चाहें आप।
हाँ जी, हाँ जी। देखिए, दरेक प्रत्येक मनुष्य होता है उसको अपनी माता के साथ बहुत लगाव होता है,
बिल्कुल
और माता के विषय में तो कह सकते हैं कि वो कज्जलम कहते हैं ना, वो हम हाथ में पूरी पृथ्वी पर लिखना शुरू कर दें समुद्र के पानी से, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, तो माता के संदर्भ में भी जितना लिखे उतना कम। तो
बिल्कुल
देखिए, कुछ ऐसे माता से संबद्ध अपनी विचारधारा के आधार पर हमने कुछ सुभाषित बनाए हैं कि माता का जो आंचल होता है वो कैसा होता है। तो
जी
शीतो हिमालयात पूतो मलया चल चंदनात, समुद्रादपि गंभीरो मातुरंकुर भकायहि। बालक के लिए माँ का आंचल होता है वो निश्चय से हिमालय से भी ठंडा होता है।
जी
आप कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन माँ के गोद में आ जाए बच्चा एकदम शांत हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक
मलय पर्वत के चंदन से भी पवित्र होता है। आप चंदन का एक नाम मलयज है, वो इसलिए है क्योंकि वो मलय नामक पर्वत में उत्पन्न होता है, तो मलय
जी
पर्वत के चंदन से भी वो पवित्र होता है। और समुद्र से भी वह गहरा होता है, ऐसा माँ का आंचल होता है।
बिल्कुल
और एक कल्पना हमने ऐसे की कि माता का जन्म कैसे हुआ, तो वो है कि प्रणय परमात्मा च साकारेण यदा भुवि, एकम रूपम तयोर प्रोक्तम माता जाता यदा भुवि। जैसे काव्य की सृष्टि होती है वो ब्रह्मा की सृष्टि से भी श्रेष्ठ होती है, ऐसा हम काव्य में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, जब पृथ्वी पर प्रेम और परमात्मा,
जी
देखिए परमात्मा के रूप में हम माता पिता को देखते हैं, लेकिन प्रेम और परमात्मा को साकार रूप में आना हुआ, तब वे दोनों माता के रूप में इस धरा पर अवतरित हो गए।
वाह
यानी माता है वो परमात्मा भी है, लेकिन परमात्मा के साथ वो प्रेम जो भाव है वो माता में विशेष है। तो ये माता के संदर्भ में फिर एक बहुत सुंदर कि माँ कौन कैसी है हमारी। नसंति यत्रो पवने ही शल्या लोके खगानाम मधुरो रवोस्ती, ऋते तुषाराद्भिर्तुर्वसंतः स्नेहाभिरूपा जननी समेसाम। हमारी सबकी जो माँ हो, माँ है वो कैसी है कि वो उपवन ऐसा है, माता रूपी उपवन ऐसा है जिस उपवन में कांटे नहीं है, वो
बिल्कुल
फूल ही फूल है। और एक ऐसा मधुर शब्द है जो पक्षियों के कलरव है उसके समान है, जहां पर और आप जब माता का सानिध्य प्राप्त करते हैं, जैसे प्रकृति में पक्षी पक्षी अपना पूरा उन्मुक्त रूप से मधुर रव करते हैं, उसी तरह माता के सानिध्य में भी हम ऐसा कर पाते हैं। और
जी
जो पतझड़ के बिना ही ऋतु हैं, तो ऋतुओं में पतझड़ ऋतु आती है, लेकिन ये तो माता ऐसी ऋतु है जिसमें पतझड़ के बिना ही सदाकाल वसंत ऋतु होती है। और
बिल्कुल
जो स्नेह के सागर के समान है, ऐसी हम सबकी माँ होती है। और भी एक बहुत सुंदर, थोड़ी मैंने थोड़ा सा अलग भी स्त्री के संदर्भ में भी, क्योंकि जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है
जी
तो देखिए उसकी एक व्यथा भी मैंने प्रस्तुत की है कि कन्या धनम पितृ गृहे परस्य गमिष्यतीदं परकीय गेहम, पत्युर गृहे तच्च धनम परस्य परस्य गेहा समुपस्थितम तत्। कन्या रूपी जो धन है वो पिता के घर भी पराया होता है।
जी
क्यों? क्योंकि वह पराये घर ही जाने वाला है, इसलिए घरों में हम बेटी को बहुत संभाल कर रखते हैं कि भाई ये तो पराये घर जाने वाला है, इसको संभाल कर। लेकिन
जी
अब देखिए, अब वो जाती तो है लेकिन पति के यहाँ भी उसकी मनोव्यथा देखिए। पत्युर गृहे तच्च धनम परस्य, पति के घर भी वो पराया मानी जाती है क्योंकि वो जो कन्या धन है वो पराये घर से आया हुआ है। तो
जी
ये आजकल जो स्त्रियों की, नारियों की जो स्थिति है वो इस तरह की भी हम समाज में देखते हैं। इसलिए हम नारी तू नारायणी, गुजराती में कहते हैं नारी को नारायणी, साक्षात नारायणी कहते हैं, क्योंकि
जी
जीवन में बहुत सारे वो कष्टों को और बहुत सारी परिस्थितियों में वो अपने को ढाल लेती।
और कोई सुनाना चाहे आप सुभाषित अपना?
हाँ जी, बहुत सारे विषयों
पिता
पर
के
है।
ऊपर भी
देखिए,
लिखा है आपने डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी, माता के ऊपर तो सुन लिया, पिता के ऊपर कुछ हो तो?
हाँ, पिता के ऊपर में मैंने लिखे हैं। देखिए,
जी
अब घर है वो पिता के बिना अधूरा है,
बिल्कुल,
तो उसमें माता को भी मैंने शामिल किया है। पित्रोर्निवासा सदने ही यत्र गेहं तु देवालय सन्निभं तत् यत्रास्ति संवादमयी स्तुति चे सुखस्य शांतेश्च परम निधानम्। घर मंदिर कब बन जाता है? क्योंकि जब उस घर में माता और पिता का वास होता है।
बिल्कुल
माता पिता का वास जहाँ होता है वह घर मंदिर के समान है, और जहाँ संवाद रूपी स्तुति की जाती है, क्योंकि घर तो हो गया लेकिन जहाँ पर संवाद नहीं है तो वो घर घर नहीं है। तो संवाद रूपी स्तुति की जाती है, वह घर है, वो सुख और शांति का उत्तम स्थान है। तो ऐसा मैंने प्रस्तुत किया है। नारी के साथ मैंने पुरुष के भी चार स्वरूपों का वर्णन किया है।
जी
देखिए,
सुना।
रूपाणि चत्वारि भवन्ति नार्यो माता स्वसौढा दुहिता तथैव तद्वन् नरस्यापि भवन्ति तानि पिता सगर्भश्च पतिश्च पुत्रः। नारी के चार रूप हम देख रहे हैं, एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक पुत्री के रूप में।
जी
सामान्य रूप से हम नारी के इन चार रूपों को देखते हैं। उसी
जी
प्रकार लोगों ने नारी के रूपों के बारे में बात की लेकिन पुरुषों के भी, मनुष्य के भी चार रूप होते हैं। एक पिता का रूप भी होता है, एक भाई का भी रूप होता है उसका, एक पति के रूप में भी हम नर को देखते हैं, और
जी
पुत्र के रूप में भी होता है, एक नर होता है उसका एक रूप पुत्र के रूप में भी होता है। तो
बिल्कुल
जैसे नारी है वो इन चार स्वरूपों में होती है, उसी तरह नर भी है, उन चार स्वरूपों में हम देख सकते हैं इसको। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के साथ मैंने सामंजस्य बैठा।
जी, बहुत सुंदर। और किसी विषय पर बताना चाहें सर?
बहुत सारे विषय हैं, मैं थोड़ी प्रासंगिक संदर्भ में भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि
बिल्कुल करिए।
जब तक प्रासंगिकता सुभाषितों की ना हो तब तक सुभाषित है वो वो लोक भोग्य नहीं बन पाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं।
आजकल डॉक्टर साहब जैसा सोशल मीडिया का शेयर होते हैं, ये सारी बातें होती हैं, ये लोगों तक जाती हैं, जन जन तक, तो अगर प्रासंगिक होंगी तभी उनका कोई महत्व है, तो फिर वो बात तो कुछ असर नहीं करती।
बिल्कुल, देखिए, हमारी एक नवीन संकल्पना ऐसी रही कि हम सुभाषित तो बना रहे थे लेकिन
जी
सुभाषितों को हमने चित्रों के साथ रखा,
जी
क्योंकि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका भी महत्तम उपयोग हमें करना चाहिए।
बिल्कुल
सुभाषित
करना।
को आप देखिए एक टेक्स्ट के रूप में रखेंगे ना तो कम लोग पढ़ेंगे, लेकिन
जी
उसी को चित्र के साथ युक्त कर देंगे तो वो सुभाषित बहुत लोगों तक पहुंचते हैं। तो
जी
हमने ये लगभग 2 साल से, वैसे तो ये सुभाषित बन गए थे पहले,
जी
एक सुभाषित, एक 111 सुभाषित पहले बन गए थे,
जी
लेकिन ऐसे ही
जी
विचार करते करते मन में आया कि इन सुभाषितों को, जैसे सुविचार होते हैं आप फोटो के साथ देखते हैं तो अच्छे लगते हैं
जी जी
और जल्दी से आपके हृदयस्थ भी हो जाते हैं, हृदयंगम हो जाते हैं। तो हमने
जी
यही प्रयत्न किया कि इसको हम चित्रों के साथ रखें, और बहुत सारा हमें प्रेम प्राप्त हुआ संस्कृत और संस्कृतेतर लोगों का।
जी जी
सुबह मैं जब कभी ऐसा हो कि कोई कार्य में व्यस्त हो गया तो 11 बजे तक सुभाषित मेरा नहीं आया तो लोग बेचैन हो उठते थे
जी
और
बिल्कुल
पूछते थे कि आपका सुभाषित क्यों नहीं आया, कोई समस्या हो गई क्या? तो
अच्छा
लोग पसंद भी इस तरह करते हैं, और कोई अपेक्षा ऐसी नहीं होती कि लोग हमारे सुभाषित को प्रसन्न करें, को पसंद करें या उस पर कोई प्रतिक्रिया दें। हमारा यही एक होता है कि हम संस्कृत के लिए कुछ करें, और ये
जी
सुभाषित है, ये लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है। अपनी कहते हैं ना, आत्मसंतोष के लिए हम कार्य करते हैं,
बिल्कुल
और आत्मसंतोष से ज्यादा कोई अपेक्षा भी हम नहीं रखते, क्योंकि आत्मसंतोष से ज्यादा कोई अपेक्षा हो भी नहीं सकती।
नहीं सर
अपना
बिल्कुल
मन प्रसन्न है तो ये काम तो हमें हम प्रतिदिन करते हैं और प्रसन्न भी करते हैं। देखिए कुछ ऐसे आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की बात अभी हम सुन रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मुखारविंद से, तो हमने भी आत्मनिर्भर पर एक श्लोक बना दिया। वनम नदी पपी चंद्रो भावे गद्यु प्रभादि भी त्वेनैव राजते नित्यम आत्मनिर्भर कारणा। अब देखिए वन वन है, उसकी शोभा, वन की शोभा को किसी दूसरे डेकोरेटर की आवश्यकता होती है क्या?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
नहीं होती। नदी के प्रवाह को कोई प्रवाहित करे ऐसी आवश्यकता होती है? नहीं होती, वो स्वयं प्रवाहित होता है।
बिल्कुल।
सूर्य की आभा, सूर्य के प्रकाश को आप है ना डाइवर्ट नहीं कर सकते, वो सब जगह जाएगा। तो सूर्य की आभा और चंद्र की प्रभा और चंद्र की शीतलता है, वो सब आत्मनिर्भर होने के कारण ही अपनी प्रतिभा से सुशोभित होते हैं। तो हमें भी इन प्रकृति के तत्वों से आत्मनिर्भर होना सीखना चाहिए। ये भाव इस श्लोक में हमने सुभाषित में अभिव्यक्त किया। फिर देखिए हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है। तो भारतीय संस्कृति का इतना अच्छा उच्च आदर्श, हम वेदों में तो सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, विश्व का कल्याण करने वाली यह हमारी भारतीय संस्कृति है। हमने इस संदर्भ में भी एक श्लोक भारतीय संस्कृति के लिए बनाया, सा संस्कृति यत्र परोपकारः। देखिए बहुत सरल भाषा में हमने सुभाषित रखने का प्रयत्न किया। लोग यदि थोड़ा प्रयत्न करें तो संस्कृत को भी समझ पाएंगे। सा संस्कृति यत्र परोपकारः चित्ते च वाण्याम क्रियैक रूपम् हितम समेषाम निहितम जनानाम हितम समेषाम निहितम जनानाम प्राण स्वरूपाननु भारतीया। अब भारतीय संस्कृति कैसी है, जहां पर परोपकार है
जी।
और तन मन और वचन में एक रूपता है, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, और सभी लोगों का हित निहित है, ऐसी हमारी प्राण स्वरूप भारतीय संस्कृति है। हम यदि भारतीय संस्कृति से विमुख होंगे तो हम अपने जैसे प्राण त्याग जैसा जैसी स्थिति होगी। और देखिए भारत के संदर्भ में भी एक सुंदर श्लोक बनाया था हमने और इसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। भाति प्रयत्न प्रतिभा विभाति भाति हिमो भाति गंगा च गाथा भव्यम भविष्यम भुवि भाति भूतम तम भारतम नौमि हृदा मुदा च तम भारतम नौमि हृदा मुदा च। जहां पर यत्न और प्रतिभा शोभा देती है, ये यत्न और प्रतिभा जहां पर शोभा देती है, जहां पर हिमालय और गंगा की गाथा भी सुशोभित होती है, जिसका भव्य भविष्य और भव्य भूतकाल, जिसका माने भव्य भविष्य और भव्य भूतकाल संसार में प्रकाशित है, ऐसे भारत को मैं हृदय से और प्रसन्नता से वंदन करता हूँ, ऐसा एक सुभाषित। और अभी कुछ एक दो साल में जो घटनाएं घटी, हम इसको हम कहते हैं नए भारत का एक निर्माण हो रहा है, उस संदर्भ में भी बहुत सुंदर एक हमने श्लोक बनाया था सुभाषित, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुसंस्कृता शिक्षण नीति भव्या लब्धा चसा पंडित राज्य भूमि श्री रामचंद्र स्वधराम ही प्राप्तो वंदा महेतन नव भारतन्नः। अब देखिए हम नए भारत को वंदन करते हैं, कैसा नया भारत है कि जहां पर सुसंस्कृत भव्य शिक्षण नीति प्राप्त हुई। सुसंस्कृत के दो अर्थ होंगे कि संस्कृत भाषा को भी एक अच्छी स्थिति प्राप्त हुई है और हमारी जो प्राचीन जो सुसंस्कृत शिक्षण नीति है वो भी आज हमें प्राप्त हुई है। तो नई शिक्षा नीति के संदर्भ में लब्धा चसा पंडित राज्य भूमि, हमने पंडितों की जो राज्य भूमि है यानी पंडितों की भूमि कश्मीर है, उसको भी 370 धारा हटाई गई तो पंडितों को उनकी कश्मीर की भूमि मिली, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और श्री रामचंद्र स्वधराम ही प्राप्त हो, श्री रामचंद्र को पुनः अयोध्या नगरी प्राप्त हुई यानी उसका भव्य मंदिर अब निर्माण होने जा रहा है, ऐसे हम नए भारत को वंदन करते हैं। इस तरह बहुत सारे प्रासंगिक दीपावली हो, धन्वंतरी त्रयोदशी हो, इसको धनतेरस कहते हैं लेकिन हमने उसको धन्वंतरी त्रयोदशी के रूप में, और गुजरात में लाभ लाभ पंचमी जहां से व्यापार आदि की शुरुआत होती है, तो उस संदर्भ
जी
में
जी
भी हमने बहुत सारे श्लोक हैं वो बनाए थे। विजयादशमी के संदर्भ
जी
में भी हमने एक श्लोक बहुत सुंदर बनाया था कि दशाननो वा शिशुपाल कंसौ दुर्योधनाद्यानि वसन्ति देहे हृद्यात्मनि स्याद् यदि राम कृष्णौ पराजयो नास्ति कदा विलोके। हमारे अंदर हैं जो वृत्तियां हैं वो कैसी हैं, तो है वो दशानन रावण, शिशुपाल और कंस दुर्योधन आदि जो वृत्तियां हैं जो हमारे शरीर में रहती, लेकिन यदि हमारे हृदय में राम और कृष्ण विराजमान है तो हमारी इस लोक में कभी भी पराजय नहीं हो सकती। तो इस तरह के कुछ सुभाषित हम निरंतर प्रस्तुत कर रहे हैं और इन सुभाषितों से एक अच्छा हमारा दिन तो सुदिन होता है लेकिन लगभग 2000 लोगों तक यह सुभाषित पहुंचता है, और फेसबुक में तो लगभग एक दिन में 1000 लोग भी इस सुभाषित को कम से कम देख लेते हैं, तो हमारा यह प्रयत्न है वो
जी जी
सार्थक हम मानते हैं।
जी बिल्कुल, भविष्य में
हाँ जी, देखिए अभी तो हमारी हमारे 500 सुभाषित तैयार हो चुके हैं, अभी इनको प्रकाशन के हम स्तर पर ले जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ काव्य भी मैंने बनाए हैं, जैसे बरसात के समय में एक कवि सम्मेलन हुआ तो बरसात पर एक कविता बना दी थी, फिर एक बुद्ध पूर्णिमा आई थी
जी
तो मैंने एक
जी
कथानक को, बुद्ध के साथ जुड़ी हुई कथानक को 20 श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। उसी तरह गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात
जी
की भी गाथा जब लिखी जा रही थी 2010-11 में, तब भी हम लोगों ने कुछ काव्य, मैंने कुछ काव्य बनाए थे। इसके अलावा भी 5-6 और जो काव्य हैं, आधुनिक जो विधा, जो हाइकू है, हाइकू, उस विधा में भी कुछ मेरी रचनाएं हैं। तो इन इन सब रचनाओं का अब क्रमशः हम संपादन और प्रकाशन करने जा रहे हैं, और यह है वो संस्कृत के लिए हमारी एक, कह सकते हैं कि एक आहुति होगी संस्कृत के कार्य में, और इसके माध्यम से हम संस्कृत को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हम समर्थ हो पाएंगे।
जी, हाइकू में अगर आपको सुनाना चाहें
हाँ जी,
चलते चलते।
हाँ जी, हाँ, एक हाइकू के भी का भी हम आनंद ले लेते हैं।
जी बिल्कुल।
नदी प्रस्तरा क्षेत्रेषु च सस्यानि कस्यचित् श्रमः। देखिए हाइकू में ऐसा होता है कि कुछ व्यंग्यात्मक होना चाहिए, माने कुछ विशिष्ट अर्थ निकलना चाहिए। उस आप बात कहें सिंपल बात हो लेकिन सिंपल बात में भी कुछ चिंतन करने का अवसर मिले, उसको हाइकू में इस विधा को अपनाया जाता है। तो
जी।
मैंने परमात्मा के संदर्भ में नदी प्रस्तरा, अब नदियों के पत्थर देखते हैं, तो पत्थर है ना, उनका शेप कैसा सुंदर दिखाई देता है।
जी जी
और क्षेत्रेषु च सस्यानि, और खेतों में आप एक सुंदर स्वरूप में अनाज को, हरियाली को देखते हैं।
जी
कस्यचित् श्रमः, इसके पीछे किसी का बहुत बड़ा परिश्रम होता है। एक तरफ परिश्रम होता है वो प्रकृति का होता है कि वो घिसते घिसते एक सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो जाता है पत्थर, और
जी
दूसरी तरफ वो जो परिश्रम होता है वो किसान का होता है।
वाह,
तो वो दोनों बात है, वो किसान और परमात्मा को सूचित करते हैं। फिर देखिए, अचलो गिरि सिंधमाना च नदी प्रकृतिर माया। आप इस संसार में देख रहे हैं कि गिरि यानी पर्वत है वो अचल है, वो हिल नहीं सकता, और उसी में से हिलती हुई, कलकल करती हुई, सिंधमान संदित होती हुई नदी जा रही है। ये प्रकृति माया, ये प्रकृति की अद्भुत माया ही तो है। एक अचल पर्वत में से एक कलकल करती हुई चंचल नदी बह रही है, ये प्रकृति की माया आप देख सकते हैं।
सच में विरोधाभासी दोनों बातें हो गई।
फिर जगत में कौन सुखी होता है, उस संदर्भ में मैंने बनाया था, रोगेण ही न, रोगेण ही न विद्या दीप्त देह। और इसको मैंने और में एक और लिख दिया, वित्तेन पूर्ण गेह जगती सुखी। देखिए इस संसार में कौन कौन सुखी होता है, तो कह रोगेण ही न, सबसे पहला सुखी तो आदमी वही है जिसको कोई रोग ना हो।
जी बिल्कुल
मनुष्य की सारी सारे दुख का कारण ये रोग होते हैं,
जी
डायबिटीज हो जाए, ये हो जाए, कहीं लग जाए, बुखार आ जाए, तो मनुष्य सुखी नहीं रह सकता।
जी
दूसरा और कौन सुखी रह सकता है, एक तो विद्या दीप्त देह, जिसका शरीर है वो विद्या से प्रकाशित हो,
जी
जिसको सच्ची विद्या, हम विद्या और अविद्या की बात उपनिषदों में करते हैं, तो जिसको सच्ची विद्या है उससे उसका जो शरीर वो दैदिप्यमान है वो सुखी होता है। अथवा ये नहीं हो तो किस आधुनिकता को भी मैंने ले लिया, वित्तेन पूर्ण गेह, वित्त से यानी कि धन से जिसका गेह, जिसका घर वो भरा हुआ है, वो जगती सुखी, वो जगत में सुखी मान, सुखी यानी वो सुखी है। एक
जी
में सुखी होना है और एक में सुखी मानना है। लोग
जी
यही समझते हैं कि वित्त से मनुष्य सुखी रहता है,
जी
लेकिन ऐसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में वित्तेन पूर्ण दीप्त देह, विद्या, विद्या से जिसका शरीर वो दैदिप्यमान है वो सुखी होता है। तो
बिल्कुल
मानना और होना, इन दोनों को भी एक हाइकू के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया था। और
जी
एक
जी
अंतिम सुना देता हूं कि
जी बिल्कुल सुना
मनुष्य को क्या पीड़ा देता है, क्षण प्रभाव, परिवर्ती स्वभाव। देखो इसमें भी उत्तर है, क्षण
जी
प्रभाव परिवर्ती स्वभाव कम न बाधते। मनुष्य को दो चीजें दुखी करती हैं, क्षण प्रभाव, क्षण में प्रभाव हो जाए, जिसका क्षण में प्रभावित हो जाए वो
जी
पीड़ा देती है, क्योंकि फिर वो प्रभावित होने के बाद क्या कर लेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है।
बिल्कुल
और दूसरा परिवर्ती स्वभाव, और मनुष्य का स्वभाव है वो परिवर्तनशील होता रहे। संस्कृत में बहुत सुंदर सुभाषित है, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रासादोपि भयंकर।
जी
कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण में रुष्ट भी हो जाते हैं। तो
जी जी
ऐसे लोगों का, ऐसे अव्यवस्थित व्यक्तियों का यदि प्रसाद यानी उसकी कृपा प्राप्त हो जाए ना, तो वो
जी
भी हमारे लिए खतरनाक होती है। तो
बिल्कुल
परिवर्ती स्वभाव, परिवर्तनशील स्वभाव, स्वभाव स्थिर हो तो वो पीड़ा नहीं देता है, लेकिन स्वभाव बदलता हुआ हो तो वो कम न बाधते, वो किसको पीड़ा नहीं पहुंचाता, यानी सभी को पीड़ा पहुंचाता है। क्षण में प्रभावित नहीं होना है और हमारा स्वभाव है वो भी परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं वो हमें पीड़ा नहीं देते हैं। इन हाइकू के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे हाइकू हैं जिनके माध्यम से मैंने ऐसी कुछ बातें जो मुझे हृदय को स्पंदित करती हैं, टच करती हैं कि कुछ है इसमें, तो ऐसे
जी
कुछ हाइकू विधा बनाना बहुत मुश्किल कार्य है,
जी
लेकिन प्रयत्न करता हूं तो उस तरह का लोगों को भी यह पसंद आता है।
जी क्योंकि इतने छोटे से में इतनी गंभीर बात कह देने की क्षमता सब में नहीं होती डॉक्टर साहब, तो ये वही कर सकते हैं जिनको, अब क्या कहा जाए। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे भाव प्रकट किए अपने हाइकू में भी। और कुछ जाते जाते आप कहना चाहें?
बस हमारा हमारी यह अभिलाषा है कि संस्कृत भाषा है वो पुनः अपने वैभव को प्राप्त हो।
जी
देखिए आजकल पूरे भारत में कहिए या संसार में देखिए, जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो मूल कारण है वह मनुष्य है,
जी
और मनुष्य ने अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहिए या अपने आप को श्रेष्ठ, एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की होड़ में
जी
उसने पूरे प्रकृति के पदार्थों के साथ, और हम कहते हैं कि पड़ोसी का जीवन है ना, वो भी संकट में डाल दिया है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है और हमारी संस्कृत भाषा है, ये दो ऐसे सशक्त माध्यम हैं, किन दो सशक्त माध्यमों के द्वारा हम पुनः ये सब जो आप देख रहे हैं, अत्याचार है, अशांति का वातावरण है, भ्रष्टाचार है, नैतिकता का जो अभी ह्रास इतना भयंकर रूप से हो रहा है आजकल, आप देखिए कि सीरियलों में और इन सब में यही पिरसा जा रहा है। तो
जी
ऐसे संदर्भ में हमारे हमारी संस्कृत भाषा को, प्राचीन को हमें उतारना है ऐसा नहीं है, लेकिन प्राचीनता की जो आज की प्रासंगिकता है उसके साथ उसका समन्वय करते जाएं हम। माने जो
जी
पुराना है वो पुराना नहीं, वो सारा पुराना नहीं होता है, और जो नया होता है वो सारा अच्छा होता है ऐसा भी नहीं होता है।
जी बिल्कुल
हम पुराण के संदर्भ में कहते हैं ना कि तो पुराना जो अच्छा है और नया जो अच्छा है, इन दोनों का समन्वय साधते हुए हम अपनी संस्कृति को संस्कृत भाषा के माध्यम से यदि हम प्रचारित करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच पाएंगे, क्योंकि यह संस्कृति है वो हमारा प्राण है, भारतीयों का प्राण है। और जब तक हमारे अंदर भारतीयता जीवित रहेगी ना, तब तक संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति नहीं जाएगी। तो यह
जी
संस्कृत के माध्यम से एक हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, और किसी को ऐसा लगेगा कि नहीं संस्कृत भाषा से क्या हो जाएगा, लेकिन जो इसमें डूबा है, जो इसमें जिसने इसको इसमें स्नान किया है, उसको पता है कि इस भाषा की क्या गरिमा है, क्या उदात्त इसका चिंतन है, और मनुष्य के जीवन के लिए कितना उपयोगी इसमें ज्ञान भरा हुआ है। इस
जी
ज्ञान को आधुनिक समाज तक, हम कह रहे हैं कि गांव-गांव घर-घर तक हम इस ज्ञान को हमें प्रस्तुत करना है। और वो प्रस्तुति का माध्यम काव्य भी हो सकता है, वो प्रस्तुति का माध्यम कोई नाटक भी हो सकता है, कोई सीरियल भी हो सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे अभिज्ञान शाकुंतल का भी एक पोस्टर आया था, बहुत सुंदर रूप से वो एक फिल्म के रूप में अभिज्ञान शाकुंतल को प्रदर्शित कर रहे हैं।
जी
तो अब आधुनिकता से हम समन्वय साधते हुए पुनः एक अपनी जो जो कहते हैं मूल जो हमारे तत्व हैं उससे जुड़े रहें, और यह मूल तत्व है वो भारत की संस्कृति को तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन विश्व संस्कृति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला देने में सक्षम है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी कारण हम अपना कार्य है वो अनवरत रूप से किसी न किसी रूप में करते हैं, और समय लगेगा, समय साध्य कार्य है, लेकिन विश्वास तो अवश्य है कि हम अवश्य इसमें सफल होंगे।
जी बिल्कुल सर, और आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक है, हम अपनी संस्कृति को तभी जान सकते हैं जब हम संस्कृत को जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने आज डॉक्टर साहब हमें, और संस्कृत को भाषाओं की जननी तो हम सब कह देते हैं, लेकिन उसे माँ समझकर पुत्र की तरह प्यार और सम्मान जो आपने दिया तो वो कम लोग ही देते हैं। आपके प्रयास सार्थक हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने हमको अपना इतना समय दिया।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुभन के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ, तो बहुत अलग अलग प्रकार के विषयों को लेकर आपका यह जो प्रयत्न है वो, और ये अनवरत प्रयत्न, एक काम एक मैच में शतक लगा देना वो सरलता है, सरल है, लेकिन प्रत्येक मैच में अच्छा प्रदर्शन करना वो किसी खिलाड़ी के लिए बहुत कठिन कार्य होता है। और आप उस अनवरत साधना कि आप पथिक हैं, और इस साधना के माध्यम से लोगों में एक जागृति ला रहे हैं, और साहित्य के प्रति, समाज के प्रति दृष्टिकोण बदलने का यह जो एक प्लेटफॉर्म है चुभन, और उसके आप जो सूत्रधार हैं, तो ये बहुत उत्तम कार्य लोगों तक पहुंचे, और आपका यह कार्य है वो विश्व स्तर पर पहुंचे, हम भारत स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर पहुंचे, ऐसी मंगल कामना और प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
जी सर, आप लोगों का बहुत बहुत, आप लोगों का सहयोग रहता है तो ये सब हो पाता है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार सर।
धन्यवाद धन्यवाद।